अज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिं किं। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज नित्यानंद त्रयोदशी है तो श्लोक तो डिस्प्ले नहीं करेंगे ना आज, तो हम लोग नित्यानंद जी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। आप लोग यह जानते हैं वैदिक ग्रंथों में विशेषकर श्रीमद् भागवतम में इस बात की पुष्टि की गई है कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं। एते चांस कलह पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मिलयन्ति जुगे जुगे। तिमे कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वयं भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण ही अपने को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं। भगवान के मूल रूप से दो तरह के विस्तार हैं। स्वयं भगवान अपने को अवतरित करते हैं तब विस्तार करते हैं दो रूपों में। एक को स्वांश कहा जाता है, स्व अंश, भगवान का ही अंश, कृष्ण का ही वो अंश होता है, और उनमें अनंत अनंत शक्ति होती है, अनंत सौंदर्य होता है, सभी ऐश्वर्य पूर्ण होते हैं, उसी को अवतार कहा जाता है अथवा विष्णु तत्व कहा जाता है। तो यह एक तरह का भगवान का एक्सपेंशन है, विस्तार है, अवतार है। फिर भगवान कृष्ण एक दूसरे रूप में भी अपने को प्रकाशित करते हैं, और दूसरे तत्व का जो मैनिफेस्टेशन है, विस्तार है, उसमें सीमित क्षमता होती है, शक्ति होती है, उसको विभिन्नांश कहते हैं। तो जितने आप अवतार की बात जानते, अवतार वे भगवान के स्वांश हैं, वो भगवान ही हैं, भगवान में उनमें अंतर नहीं होता, कृष्ण है उनमें तो भगवान है, और दूसरे विभिन्नांश है जिसमें छोटी छोटा छोटी शक्ति होती है, कम शक्ति होती है, उसको जीव कहते हैं। हम लोग विभिन्नांश हैं, हम लोग भगवान के ही अंश हैं, भगवान से ही आए। ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। परंतु हम लोगों में, जीव में वो छोटी कम शक्ति है, कम ताकत है, कम ऐश्वर्य है, लिमिटेड है, सीमित है। तो वैदिक ग्रंथों में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कौन है, कृष्ण है, स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान है। और चैतन्य चरितामृत में यह कहा गया है कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। भगवान के फर्स्ट एक्सपेंशन, भगवान अपने को अवतार लेते हैं, विस्तार करते हैं स्वांश के रूप में, तो भगवान का पहला विस्तार है, पहला एक्सपेंशन है, वो बलराम जी है, वो भगवान ही। तो बलराम जी में और कृष्ण में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, भेद नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी बहुत बार प्रवचन करते थे, तो स्वयं भगवान कृष्ण है, इनके बाद उनके बराबर कोई बलवान नहीं हो सकता है, सभी ऐश्वर्य से पूर्ण है, विशेषकर शक्ति ताकत भी स्ट्रेंथ भी। लेकिन कभी कभी प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं कि बलराम जी में बहुत ताकत है, बलराम उनका नाम था, उन्हें बहुत बलवान है, इसीलिए बल जोड़ दिया। तो कभी प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्ण के समान कोई बलवान, सबसे बलवान, और कभी कभी कहते हैं कि बलराम जी सबसे बलवान। तो उनसे पूछा गया, प्रभुपाद जी आप कहते हैं कि सबसे बलवान व्यक्ति कृष्ण है, और कभी कहते हैं सबसे बलवान व्यक्ति बलराम है, तो इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट अपने ही कोई कर रहे हैं। तो बलराम जी कृष्ण से, बलराम जी में कृष्ण से ज्यादा शक्ति है कि कम शक्ति है, आप लोग क्या समझते हैं? बलराम जी में कम क्यों हो? प्रभुपाद जी तर्क देते थे, युक्ति देते थे, चूंकि वे बड़े भाई हैं, उम्र में बड़े हैं, इसलिए उनमें ज्यादा ताकत होनी चाहिए, और हैं भी। लीला में कम से कम बलराम जी ही ताकत, उनमें ही ज्यादा शक्ति है। ऐसे कभी कभी होता नहीं है, लेकिन कृष्ण बलराम को लड़ा दिया जाए तो बलराम जी विजयी हो जाए। तो बलराम जी कृष्ण से भी बलवान है, क्योंकि वो बड़े भाई। परंतु स्वयं भगवान कृष्ण है, सभी शक्तियों के मूल उत्स कृष्ण है, इसलिए कृष्ण बलराम जी से बलराम, बलराम जी से कृष्ण में ज्यादा ताकत है। एनी चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, वो एक कहीं केवल बनावट का जो शरीर शारीरिक जो बनावट है उसमें भिन्नता है और किसी प्रकार का भिन्नता नहीं है। विशेषकर बलराम जी में और कृष्ण में एक विशेष लक्षित अंतर यह है कि बलराम जी का स्त्री विग्रह गौर है, गोरे हैं, और कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं वे काले, तो यही अंतर है। और ताकत में किसी प्रकार का अंतर नहीं, दोनों एक ही है। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय आद्य काय विहु कृष्ण लीला रस है। तो मूल कृष्ण ही अपने को बलराम जी रूप में विस्तार करते हैं और बलराम जी के द्वारा ही बहुत सा काम होता है। ये सृष्टि का जितना प्रपंच है, जो क्रिएशन है, कृष्ण हाथ उसे नहीं लगाते हैं। बलराम और बलराम के जो एक्सपेंशन है उनसे सृष्टि का विस्तार होता है। कृष्ण कुछ भी सृष्टि कार्य में कोई भाग नहीं लेते, वही कृष्ण ही करते हैं। लेकिन तो और भी एक बात है, प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में बार बार या चर्चा प्रवचनों में चाहे राइटिंग्स में परपट में लिखते हैं कि पहले तो कृष्ण और बलराम में किसी प्रकार की ताकत नहीं है। कृष्ण ताहर द्वितीय बोध, कृष्ण स्वयं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह स्त्री बलराम बलराम। तो बलराम जी मूल व्यक्ति हैं। आज इनको बलराम जी को कभी कभी आदि गुरु भी कहा जाता है, मूल सबसे। और जो गुरु होते हैं स्पिरिचुअल मास्टर वो क्या है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जो नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम है, नित्यानंद प्रभु की जो शक्ति है और नित्यानंद प्रभु की जो दया है, भगवान नित्यानंद प्रभु का प्रेम, नित्यानंद प्रभु की कृपा और नित्यानंद प्रभु की शक्ति, तीनों ही वो उसका जो प्रकट मैनिफेस्टेशन है गुरु। किसी भी व्यक्ति में भक्ति करने की जो क्षमता होती है कि भक्ति के साधनों का श्रवण कीर्तन वो कर सके, और इसके साथ स्पिरिचुअल जो ब्लिस होता है, आध्यात्मिक आनंद होता है, उसका कोई जीव आस्वादन करता है, तो ये इसकी एबिलिटी क्षमता गुरु से आती है। गुरु कारण बनता है, उसके कारण कोई भी व्यक्ति में क्षमता आती है कि भक्ति के जो साधन है श्रवण कीर्तन वो कर सके। इसके साथ जो स्पिरिचुअल ब्लिस जिसे कहता है, आध्यात्मिक आनंद होता है, प्रेम का आस्वादन है, ये सब करने की क्षमता एबिलिटी कहाँ से आती है, गुरु से आती है। गुरु चैतन्य गुरु नित्यानंद प्रभु की शक्ति, नित्यानंद प्रभु का प्रेम और नित्यानंद प्रभु की जो दया है, वही जब मूर्ति रूप मैनिफेस्टेशन होता है, मूर्त रूप में होता है, तो वह गुरु होता है। तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। हम लोग थोड़ा नित्यानंद प्रभु की कुछ लीला का वर्णन करते हैं। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव एक चक्रा नाम के गांव है, उस ट्रैक ऑफ लैंड को राढ़ देश कहते हैं, राढ़ देश। तो राढ़ देश में एक गांव है, इस समय वह बंगाल में है। राढ़ देश में गांव है एक चक्रा, और उसी एक चक्रा गांव में नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव आज के ही तिथि को, मतलब कि आज कौन तिथि है, माघ महीने का शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष का यह आज त्रयोदशी है, परसों दिन एकादशी थी, कल द्वादशी, आज त्रयोदशी, तो इसी दिन नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव 1474 में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव चैतन्य महापुर प्रकट हुए थे, अवतार लिए थे, मायापुर में प्रकट हुए थे, वह था 1486 गौर पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चैतन्य महापुरु का। तो यदि चैतन्य महापुरु का 1486 में जन्म हुआ था और नित्यानंद प्रभु का जन्म 1474, तो दोनों में से कौन बड़े हैं उम्र की दृष्टि से? कितना वर्ष? 12-13 वर्ष, लगभग 12 वर्ष। तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व 12-13 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव एक चक्रा गांव में हुआ था। तो चूंकि आविर्भाव की बात है, थोड़ा इसी समय शायद भूल जाएंगे, तिरोभाव की भी बात बताते। नित्यानंद प्रभु का तिरोभाव अप्राकट्य 1540 में हुआ था। तो यह आप लोग गणित जानते हो, तो कितना वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु लीला मैनिफेस्ट किए? 40 वर्ष उसमें और 26 वर्ष, 26 न 74 वर्ष, कुल मिलकर कितना हुआ? और चैतन्य महाप्रभु समाहित हो गए गोपीनाथ में, प्रवेश कर गए थे 1534 में। मतलब चैतन्य महाप्रभु से के 6 वर्ष बाद नित्यानंद प्रभु का तिरुभाव हुआ। उसे तिरुभाव नहीं कहेंगे अब, कोई अप्रकट होता है। तो एक चक्रा गांव के बाजू में ही एक श्री विग्रह है, अभी वो कही गांव में ही है, कृष्ण का एक श्री विग्रह है, बंकिम राय नाम है, बंकिम मंड टेला, यहां जो बांके बिहारी शब्द है, बंकिम राय वो श्री विग्रह था और नित्यानंद प्रभु उसी बंकिम राय कृष्ण के विग्रह में ही प्रवेश कर गए थे नित्यानंद प्रभु 1540 में। उनके जो पिता थे, पिता के ख्याति लोग जानते हैं हड़ाई पंडित, लेकिन वास्तव में उनका नाम था मुकुंद, उनका नाम था मुकुंद लेकिन ख्याति थी हड़ाई पंडित के रूप में, और माता का नाम था पद्मावती। माँ जो थी जिन्होंने नित्यानंद प्रभु को अपने उदर में धारण किया था, पद्मावती थी। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव हुआ तो बहुत, ऐसे तो स्वयं भगवान ही है, तो इतना सुंदर सुशील इतना इनका श्री विग्रह था कि गांव के लोग, सभी लोग नित्यानंद प्रभु से प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। इनका शील स्वभाव जो छोटे, जब थोड़ा सा बड़े हुए तो शील स्वभाव बहुत सुंदर था, सुंदर इनका रूप था, इसलिए गांव के सब लोग इस बच्चे को, बड़ा नित्यानंद प्रभु को बहुत सब लोग प्रेम करते थे। और जब थोड़ा थोड़ा सा बड़े हुए नित्यानंद प्रभु तो और भी प्राय खेल करते थे, लेकिन एक विशेष प्रकार का उन्होंने खेल में रुचि थी, ड्रामा करते थे, नाटक करने के खेलते थे। तो बच्चों को धूली में खेल रहे हैं, नदी के बालू में खेल रहे हैं, तो बच्चों को ट्रेनिंग देकर ड्रामा कराते थे, नाटक कराते थे, प्राय रामलीला का आयोजन करते थे चाहे कृष्ण लीला का। तो जो भी अब ड्रामा करते थे तो भिन्न भिन्न पाठ लेना पड़ता था, रोल अदा करना। तो नित्यानंद यदि कृष्ण लीला होता था तो अपने बलराम का पाठ लेते थे, रामलीला कराते थे तो लक्ष्मण का, इस विषय में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और बांटने में कभी किसी कोई रावण बन गया, कोई वह बन गया, लेकिन जहां लक्ष्मण बनना हुआ तो नित्यानंद प्रभु थे, बलराम बनना होगा कृष्ण लीला में तो बलराम बनते थे। तो हम एक छोटी सी लीला का वर्णन करते हैं, एक दिन की बात है। नित्यानंद प्रभु उस समय स्कूल में पढ़ने लगते, गांव में पाठशाला होता है, पढ़ते थे। और आप लोग जानते होंगे कि बीच में प्राय क्लास चलता है, बच्चे खा पी कर 9-10 बजे क्लास में जाते हैं, 9 बजे 4 बजे छुट्टी हो जाती है, प्राय यही सिस्टम। तो घर से खा कर, लेकिन उसके बीच में लगभग एक घंटे के लिए गैप दिया जाता है। इस समय भी एक घंटे, उस समय कोई लड़के खेलेंगे चाहे कुछ, जो कुछ उनको करना है, चाहे कुछ लोग खाएंगे जो कुछ, तो प्राय होता था नित्यानंद प्रभु एक डेढ़ घंटा, जो उनको एक घंटे लगभग मिलता था समय दोपहर के समय, तो बाजू में ही नदी प्रवाहित होती है, उसके बालू पर चले जाते थे और ड्रामा करते थे। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, दोपहर के घंटी बजाया जाता, घंटी बजी, सभी बच्चे अपने रूम से कक्षा से निकल गए जहां तहां खेल रहे, तो उस दिन नित्यानंद प्रभु बालू पर गए और यही ड्रामा करना है, नाटक करना है। तो नाटक में उस दिन यह प्रसंग था, आप लोग जानते हैं प्रसिद्ध कथा है, मेघनाद जो रावण का पुत्र था ना, उसने लक्ष्मण जी को मारकर घायल कर दिया था, प्रसिद्ध रामायण की कथा है। उनको शक्ति बाण लग गया था लक्ष्मण को, लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तो वो जब मूर्छित थे तो हनुमान जी का आप लोग फोटो देखते हैं, वो पहाड़ लिए, तो हनुमान जी लंका में युद्ध हो रहा था, वहां से आए थे हिमालय में। क्यों आए थे कथा आप लोग जानते हैं, क्या हो गया, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया, दिन में युद्ध हो रहा था, मेघनाथ ने उनको मार दिया, मूर्छित हो गए। शाम के समय अब उनकी मूर्छा टूट नहीं है, लक्ष्मण की होश में नहीं आ रहे हैं, कॉन्शियस में चेतना में नहीं आ रहे हैं, तो बड़ा कंसर्न हुआ, तो वैद्य बुलाना चाहिए। तो रावण का रॉयल फिजिशियन राज वैद्य था, सुसेन नाम था ना, क्या वहां तो उपलब्ध डॉक्टर को बुलाया गया, सुसेन आ गया, उस समय की मोरालिटी थी चाहे कुछ भी हो, शत्रु औषधि करने का होता है। लक्ष्मण का पकड़ा वह पल्स, सो क्या क्या समस्या है, तो उसने बताया कि भाई इनका उपचार हो सकता है और बहुत जल्दी करना चाहिए, एक विशेष प्रकार की औषधि है, जड़ी बूटी है, उसको यदि पीस कर एडमिनिस्टर किया जाए, इनको दिया जाए मुंह में, सुंघाया जाएगा तो जीवित हो जाएंगे। ये सब लेट इवनिंग की अब बातचीत हो रही थी, ये सब करने में रात्रि का समय था। तो लेकिन दुर्भाग्य था कि सुषेण ने बताया कि वह औषधि उस क्षेत्र में लंका में उपलब्ध नहीं है, ये औषधि उपलब्ध है हिमालय में, संजीवनी बूटी, मृत संजीवनी बूटी, एक ऐसी औषधि हो कि मरे हुए में जीवन का संचार कर सके, लेकिन दुर्भाग्य वह प्राप्त है हिमालय पर। और सुषेण ने यह भी बताया कि दवा करने सूर्योदय के पूर्व दवा कर देना है, चेतना में आ जाना चाहिए, जब सूर्योदय हो जाएगा तो लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। तो तुम्हारी समस्या कहाँ, हिमालय आप जानते बद्रीनाथ के तरह, कौन ला सकता है, इतना जल्दी लाना था, सूर्योदय से रात्रि में बात ही थोड़ी रही, 7-8 बजे शाम को, और सूर्योदय से पूर्व लाना है, और लाने से पहले उसको एडमिनिस्ट्रेटर का पूछ कर देना है। अब कौन जा सकता था, हनुमान जी तैयार हो गए, मैं जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी जाने को तो तैयार हुए, लेकिन भारी समस्या थी कि जड़ी बूटी पहचानते नहीं थे, आखिर जा रहे लाने के लिए पहचानेंगे कौन सा उसका। तो वो हनुमान जी चले तो गए वहां पर, तो उसने कुछ लक्षण बता दिया, उसमें थोड़ा सा प्रकाश रहता है वैसे करता, तो वहां गए तो बहुत से चारों तरफ विभिन्न तरह के जड़ी बूटियों में प्रकाश था, पहचान नहीं सके। तो हनुमान जी ने कहा कि अब तो जड़ी बूटी तो लाना है, तो पहाड़ ही उठा कर लाए थे, इसलिए हनुमान जी को हम देखते हैं तो वही हिमालय के कुछ भाग जहां वो जड़ी बूटी था, तो पूरा पर्वत ही उखाड़ लिए कुछ दूर तक का, उसी में, और उसको वहां पर लाया गया, तो पहचान सुबह पहुंच गए, भोर में पहुंच गया, उत्तर से वो वैद्य ने किया, उसके बाद दे दिया गया, लक्ष्मण जी को पिलाया गया और लक्ष्मण जी। तो रामायण की यह कथा थी, और इसी के लिए नित्यानंद प्रभु जो 5-6 वर्ष के बच्चे ही थे, अभी 6-7 वर्ष की ज्यादा उम्र नहीं था, यही ड्रामा करना है। तो सब कुछ उत्तरदायित्व उसके, चाहे प्रिंट राइटर चाहे डायरेक्टर सब नित्यानंद ही होते हैं। अब दूसरा कोई अवसर बता कहे कि इसको करना बोलना है तो नित्यानंद पर ने किसी को रावण बना दिया, किसी को रावण बनाया, किसी को वैद्य बनाया, विभीषण सब कुछ पाठ बांट दिया, किसी को हनुमान बना दिया, किसी को जामवान, जितने आप जानते हैं, और अपने पाठ ले लिए लक्ष्मण का। तो बच्चे बालू पर, अब दिन के समय था, अभी छुट्टी थोड़ा एक घंटा युद्ध कर रहे थे जब, तो मेघनाथ जो बच्चा बना था उसने थोड़ा सा से जो मारने का काम फेंक दिया और नित्यानंद पर लक्ष्मण, तो लक्ष्मण जी को मूर्छित होना तो गिर पड़े, गिर पड़े। तो जो बच्चा राम बना था वो नित्यानंद प्रभु को अपने गोद में, उनका सिर अपने गोद में ले लिया और रोने लगा, विलाप करने लगा, सभी बंदर रोने लगे। रोना है सबको, नाटक हो रही तो सबको हनुमान बने हैं और उसर जो रावण बने थे और लोग उनके उसर को खुशी मनाना है सबको। तो लीला करते करते यह पॉइंट आया कि सुषेण को बुलाया गया, जो लड़का सुषेण बना था वो आया, अभी तो सब वहीं के थे, बच्चा ही था, उसने हाथ पकड़ा नित्यानंद प्रभु का, पल्स पकड़ा और वही कहा कि हाँ इसकी औषधि हो सकती है लेकिन औषधि हिमालय में प्राप्त है, जाकर वहाँ को लाएंगे। तो जो लड़का हनुमान बना था उसको कहा कि वह नाटक और जाओ उधर से पूछ रहा। तो हनुमान जो लड़का बना था वो गया उधर, थोड़ा देर तक दूर तक जाना था। राम जी रो रहे थे, बंदर रो रहे थे, हनुमान जी गए। यही जब अवस्था थी नित्यानंद प्रभु जो राम लड़का बना था उसे गोद में से मूर्छित का बहाना कर रहे हैं, तब तक उधर घंटी बज गई, पीरियड समाप्त। तो बजी तो जो हनुमान बना था वो दौड़ कर क्लास में, जो रावण बना था तो राम बना था लड़का, वो भी नित्यानंद को छोड़ छाड़ कर चला गया क्लास में। गए क्लास में गए तो वहां पर बड़ा पढ़ाई चालू हुआ और नित्यानंद में तो ऐसे ही वहीं पर पड़े रहे मुझे। क्लास में सब बच्चे आ गए तो हाजिर देखा जाता कौन है, तो नित्यानंद गायब है, आया नहीं। तो जो शिक्षक थे गुरुजी थे, तो नित्यानंद कहाँ है, तो बताए कि उधर, तो एक लड़को को भेजा कि जाकर लाओ, बुला लो, वहां क्या कर रहा है, पढ़ाई का चालू होना है। वहां को लड़का गया तो देखा कि नित्यानंद बेहोश वैसे पड़े हुए। तो देखा था उसने तो ड्रामा का वही लड़का ही था, वही पार्ट है, तो उसने जगाने का प्रयास किया लेकिन नित्यानंद एकदम नहीं, आकर स्कूल में बताया कि ऐसा हो, तो वहां पर पड़े पता नहीं क्या हो गया लड़का, रो उधर से गया तो हंसते दौड़ कर गया था, उसे रोते हुए लड़का आ रहा है कि देखा कि पता नहीं जीवनी के मैंने शरीर में प्राण है कि नहीं उसको पता, एकदम क्रंदन करते आ गया। स्कूल में आए तो यहाँ के मैंने टीचर सब सभी लड़के दौड़ कर गए कि हुआ क्या, वहां जाए तो एकदम सब लोग क्रंदन करने लगे, इतना सुशील लड़का, सुंदर लड़का, पता नहीं क्या हो गया। स्कूल के लोग बच्चे रो रहे थे, शिक्षक रोने लगे, सभी उनसे प्रेम करते। इसके बाद गांव में खबर लगे थे, गांव के सब लोग दौड़ कर आए सब रो, देखते थे तो बच्चा रुआ, इनके माता पिता आ गए, उनका क्या अवस्था हुई, इकलौता पुत्र एकदम चेतना में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ, मर गया क्या हो गया, सब लोग रो रहे थे। तब तक एक वृद्ध व्यक्ति थे ऐसे लाठी टेटे, वो धीरे धीरे आए थे, वो जल्दी नहीं, वो तो धीरे धीरे बेचारे को ऐसे करके आए। तो यहाँ पर सब लोग रहे थे, वो पूछने अरे हुआ कैसे यह, तो वो सब लोग बताए, लड़के बताए कि ऐसा ऐसा हम लोग ड्रामा कर रहे थे, इन्होंने काट मारता वैसे, तो उसी समय तो वो वृद्ध व्यक्ति कहे कि अच्छा तुम लोग में से राम कौन बना था। तो राम जो लड़का था उसको बोला तुम आओ बैठ जाओ यहाँ पर, नित्यानंद प्रभु के सिर को अपने गोद में ले लो और जो जहाँ जामवान बने थे, अंगद बने थे, सबको ऐसे वहीं पर बैठना है सबको, फिर से ड्रामा चालू, तुम लोग रो, सुषेण वैद्य को बुलाएगा, सब कुछ किया। और हनुमान जो लड़का बना था उसका कि अब सुषेण वैद्य कहा, वैसे सब फिर से नाटक चालू हुआ, राम जी रो रहे हैं, सुषेण वैद्य जो लड़का बना था, हनुमान जो कहा कि जा, हनुमान जी गए उधर, तो नाटक को इंटरप्ट नहीं कर, वो लड़का गया उधर हनुमान वाला और ऐसे एक ऐसा मिट्टी का लाया वहां पर, दे दिया सुषेण के हाथ में, वो जो घास थोड़ा सा ऐसे लेकर ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे, वो बैद लिया ऐसे ऐसे लेकर, कुछ करना नहीं था ऐसे चुन लिया घास। राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण जी के ऐसे पर क्या जो कि इतना करते ही मतलब हरी बोल करके नित्यानंद पर छलांग करके खड़े हो गए। कीर्तन ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ नहीं हुआ था। तो नित्यानंद प्रभु की एक लीला, ऐसे बहुत सी लीलाएं हैं, एक ड्रामा करते थे या हुआ था तो एकदम कुछ नहीं हुआ था बस। तो और जब नित्यानंद प्रभु लगभग 12 वर्ष के हुए थे तो वहां एक विप्र आए थे, साधु आए थे, महात्मा आए थे, सन्यासी आए थे और बड़ा स्वागत किया मुकुंद ने अथवा हड़ाई पंडित ने और बढ़िया सत्कार किए। तो बहुत समय तक रह जाते समय वो कहते थे कि हमारी कुछ सेवा स्वीकार के लिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, इनके पिताजी कहते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला हूँ, तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, हमको कोई एक सहाय की जरूरत है, तो आपका जो लड़का है उसको हमको दे दीजिए, हमारे साथ रहेगा, हमारी सहायता करे। कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मीपति नाम के वो महात्मा थे। हम लोगों की परंपरा जो आती है लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति के ऐसे माधवाचार्य, माधवाचार्य की परंपरा लक्ष्मीपति आते हैं, लक्ष्मीपति के शिष्य हैं माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के चैतन्य पर्वत, तो हम लोगों की यह परंपरा थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मीपति थे, तो उन्होंने मांगा तो दे दिए। इच्छा तो नहीं थी लेकिन अब एक लौता पुत्र इतना प्रिय, प्राण भी नहीं रह सकता उसके बिना, लेकिन दे दिए। तो नित्यानंद प्रभु उनके साथ भ्रमण करने लगे और 20 वर्ष लगातार 20 वर्ष भ्रमण किए तीर्थों का, सभी जाप जितना तीर्थ का नाम सुनते हैं लगभग सभी जगह चैतन्य नित्यानंद प्रभु गए थे। कुछ समय तक तो लक्ष्मीपति के अथवा ब्राह्मण के साथ रहे, फिर अकेले होकर यात्रा करते रहे और 20 वर्ष तक। और यात्रा के अंत में वृंदावन आए थे, एक बार पहले भी वृंदावन आए थे, दूसरा सौ तीसरा अंत में आए थे वृंदावन में। और वृंदावन में जमुना जी के किनारे श्रृंगार बट है, कल वहाँ उत्सव भी होना है, वहीं पर नित्यानंद प्रभु रुके थे श्रृंगार बट में। और वो अन्वेषण कर रहे थे कि कृष्ण का अन्वेषण करें, कृष्ण कहाँ है। बलराम का उनको आवेश आ जाता था और कृष्ण कहाँ है कृष्ण। तो यहीं उनको पता लगा, उनको ऐसा लगा कि कृष्ण अवतार लिए हैं, वृंदावन में नहीं हो, नवदीप में है। तो यहाँ से नित्यानंद प्रभु ठीक है, यहाँ पर जो श्रृंगार बट है केसी घाट के बाजू आप लोग देखे, वहीं से यात्रा डायरेक्ट अब यात्रा किए नवदीप की। और नवदीप में चैतन्य महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु गए तो जाने से दो चार दिन पहले चैतन्य महाप्रभु वहां कहने लगे थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु की अवस्था 20 वर्ष की थी और नित्यानंद प्रभु का 32 वर्ष लग 32-33 वर्ष की आयु हो गई थी। वहां गए तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि कोई बड़े बड़ा व्यक्ति यहाँ पर मायापुर में आने वाला है, कोई बड़ा व्यक्ति आने, दो तीन दिन पहले से कहना चालू किए थे। नित्यानंद प्रभु गए तो नित्यानंद प्रभु यहां तक तो गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने को, पता लग गया था कि भगवान कृष्ण वहां पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, लेकिन वहां गए तो गांव में प्रवेश नहीं किए, जहां जन्म स्थान है चैतन्य महाप्रभु का, अपना घर था वहां नहीं गए। वहां से थोड़ा दूर आप लोग यदि मायापुर में गए होंगे तो जलंगी और गंगा जी का जो कन्फ्लुएंस है, मिलन है, उसके थोड़ा सा इस्कॉन मंदिर की तरफ चलते हैं मेन रोड में, नंदनाचार्य जी का भवन है। नंदनाचार्य नंदन आचार्य थे, बड़े बड़े चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम एसोसिएट, उनके घर में गए और रुक गए वहीं पर। नंदनाचार्य ने स्वागत किया और नंदनाचार्य से नित्यानंद प्रभु यह बात कहे कि आप कृपा करके यह किसी को नहीं बताना है कि मैं यहाँ हूं, मैं थोड़ा एकांत में रहना चाहता। और उनका यह भी भाव था कि मैं इतना देर दूर से आया चैतन्य महाप्रभु के लिए, तो उनको भी हमारे तरफ आना चाहिए, एकदम नहीं जाऊंगा, ऐसे ज्यादा नहीं नजदीक होऊंगा। कि तो उन्होंने पालन किया उस शर्त का, क्या कहते हैं नंदनाचार्य, किसी को बताते नहीं थे, घर में रहते थे नित्यानंद प्रभु है वहां पर, किसी को बताया नहीं। और उधर चैतन्य महाप्रभु एक दिन सभी भक्तों से कहे कि हमारे नगर में बहुत एक महापुरुष कोई आए हुए हैं, आप लोग ढूंढना चाहिए। तो इधर चारों तरफ नवद्वीप में ढूंढते थे, घर घर में पूछते थे, कोई नहीं पता था। और इनको कहा गया था, बताते नहीं थे ये, तो इनको कहे थे नित्यानंद प्रभु, किसको बताना नहीं थे। तो नंदनाचार्य तो बताते नहीं थे, तो चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को भेजे चारों तरफ, कहीं पता नहीं लगता था। एक दिन खुद चैतन्य महाप्रभु अन्वेषण करने लगे, चैतन्य महाप्रभु को खोजना था। कोई महापुरुष ऐसा नहीं बताते थे, कोई बड़ा व्यक्ति महान साधु महात्मा आया हुआ है, उसे मिलना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ आए, नंदनाचार्य भवन में आए, तो वहां चैतन्य महाप्रभु का प्रथम मिलन नित्यानंद प्रभु से हुआ। उस समय चैतन्य महाप्रभु की आयु लगभग 20 वर्ष की थी, मानवीय गणना के अनुसार, हम लोगों की गणना का कैलकुलेशन के अनुसार नित्यानंद प्रभु 32 वर्ष के थे। 32 वर्ष की अवस्था थी नित्यानंद प्रभु की, लगभग 12-13 वर्ष की अवस्था में निकल के थे भ्रमण के लिए, 20 वर्ष तक भ्रमण किए थे। तो वहां पर रहते थे, मैं एक छोटे और बहुत सी वहां पर लीलाएं हैं आपको नित्यानंद प्रभु की नवद्वीप में मायापुर में। कुछ ऐसे लीला होती है कि थोड़ा भगवत्ता प्रदर्शित करता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आ गए, नित्यानंद प्रभु आ गए और श्रीवास पंडित के यहाँ ही रहने लगे। और जो माँ थी उनकी, क्या नाम था, मालिनी मालिनी के प्रति इनका हमेशा मातृत्व भाव, माता के रूप में वही पुत्र भाव में इनका पालन पोषण करने, उन्हीं के यहाँ नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के यहाँ रहने, वहां रहते थे, खूब बढ़िया से पालन उसने किया। ऐसे ग्रंथों में कई एक जगह वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु जदपि कुछ समय 32 वर्ष के थे हम लोग के गणन से, लेकिन मान ली कभी कभी वो चैतन्य महापुर हाथ से खाते भी नहीं, नित्यानंद पर खाते भी नहीं, तो खुद उसको खिलाना पड़ता था हाथ मुंह से, चावल से लेकर उसे मुंह में डालते थे, नहीं तो कुछ प्रयास नहीं करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी बात्सल्य से मालिनी देवी मालिनी के अस्तनों से दूध प्रवाहित होने लगता है और डायरेक्ट नित्यानंद प्रभु स्तन पान भी करते थे। और कभी भगवान की ऐसे विचित्र लीला थी। एक दिन एक घटना घटी, मालिनी जब भगवान को नैवेद्य अर्पित करती थी तो विभिन्न प्रकार के पात्र, एक बहुत छोटी सी कटोरी थी जिसमें भगवान को घी उसमें रखा जाता था और चीजें, किसमें सब्जी रखा जाता है दाल सब, तो एक विशिष्ट बढ़िया सुंदर बहुमूल्य पात्र था जिसमें घी नैवेद्य अर्पित करती थी, वहां पर थोड़ा घी रखकर भगवान को अर्पित किया जाता था। एक दिन की बात है, घी के नैवेद्य अर्पित हो चुका था, थोड़ा सा उसमें घी था भी लगा हुआ था, तब तक एक कौवा आया, घी थोड़ा खाया दौड़ा के तो कटोरी लेकर भाग गया, उड़ गया। अब उड़कर तो आकाश में आंगन से कहां चला गया, खेत में किधर थे जंगलों में चला गया। और वो कटोरी को एक कोटर में खूंढ़ से बीर वहां पर गिरा कर फिर घूम रहा था, अब फिर आ गया आंगन में, वो तो कौवा कौवा है तो इधर उधर काम है तो भटक रहा था यार। और बेचारी मालिनी इतने गरीब ब्राह्मण पत्नी, कटोरी खो गया, वही महत्वपूर्ण है कि जिसमें भगवान को नैवेद्य, कल घी में कल नैवेद्य अर्पित करना होगा, भोग लगाना होगा, तो घी में किसमें रहते, बेचारी रो रही थी, क्रंदन कर रही थी, कटोरी खत्म हो गया। भगवान के पूजा का उपकरण था, बहुत खीन थी, तब तो घूमते घूमते नित्यानंद तो वहीं रहते थे आ गए। तो बड़ा खिंती माँ है, रो रही है, कटोरी उसका गायब हो गया है। तो नित्यानंद प्रभु पूछे तो माँ ने बता दिया कि ऐसी से घटना की। तो नित्यानंद बड़े चिंतित, तब देखा कि वही कौवा फिर से छप्पर पर बैठा था, ऊपर घर के ऊपर बैठा था। और मालिनी देवी रोज चेतन नित्यानंद प्रभु ने कहा, कौवा कहे सुनो सुन जल्दी से जाकर कटोरी तुमको लाना है। कौवे से कहे वो ऊपर काम काम बेचारा ऊपर छत पर उधर छप्पर बैठा है, कहे कौवा जाओ। तो अपेक्षा तो नहीं थी अब ऐसा कहे कौवा का, लेकिन मालिनी देवी देख रही थी कौवा उड़ा उधर गया। वो तो पता नहीं था किधर रखा है, उसको पता था कौवे को कहाँ को रखा है, उधर गया और उधर अपने ठोर मुंह में पकड़ कर उसे उड़ते हुए ऊपर से नहीं छोड़ा, एकदम नीचे बैठ कर और धीरे से वहां पर जहां से उठाया था वहां रख फिर उड़ गया। तो कौवे ने पालन किया, बढ़िया से पालन किया भगवान की क्या। तो नित्यानंद प्रभु का एक लीला उनके आंगन में, श्रीवास आंगन में हुई थी। एक बहुत प्रसिद्ध लीला आप लोग जानते हैं, और भी जब नित्यानंद प्रभु वहां रहते थे तो जगाई मधाई के उद्धार की बात है। जगाई दो ब्राह्मण कुमार थे, वास्तव में माता पिता ने नाम रखा था जगन्नाथ और माधव, जगाई मधाई नाम नहीं था। जगन्नाथ को लोग कहते थे जगाई और माधव को मधाई, जगन्नाथ और माधव यह नाम था उन लोगों का। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था सब संस्कार, लेकिन एक नंबर के वो बदमाश निकले थे। बड़े हुए तो एकदम से मैंने वो ऐसे चेतन चेतन में ऐसा कहा गया कि ऐसा कोई अपराध नहीं था, कोई पाप नहीं था जिन्हें उन्होंने छोड़ा। एकदम जीवन से ही उनको लगता था कि अंदर उनके ब्लड में पाप करने की प्रवृत्ति थी। ब्राह्मण परिवार में जन्म मतलब उससे खून में ही अपराध करने की, पाप करने की प्रवृत्ति थी। लेकिन थे नवदीप मायापुर के वासी थे, अब गांव वहां था, कितना बढ़िया चैतन्य महापुर के गांव में रह रहे, और ऐसे पापी निकले थे, खूब करते थे। तो एक समय नित्य चैतन्य महाप्रभु जो प्रचार कार्य चालू किए थे, बहुत टीम बनाया था प्रचार का, यह इधर जाएगा वह उधर जाएगा, तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास को एक टीम में रखे थे चैतन्य महाप्रभु, रोज भेजते थे जाओ भगवान के भक्ति का, कृष्ण भावना का, कृष्ण कांस्य का प्रचार करो। तो प्रचार में उस समय का यही प्रचार था कि जाकर लोगों से कृष्ण नाम का उच्चारण करना, उनको भगवान के विषय की ओर भगवान का जप करें, अपने जीवन को सदाचार पूर्ण कृष्ण को शरण में रहें, कृष्ण की भक्ति करें, यही जाकर कहते थे। एक दिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी गए थे, तो उधर ही निकल गए, तो वो लोग तो हमेशा वो शराब पिए रहते थे, शराब के नशे में थे। देखे नजदीक चले गए, नित्यानंद प्रभु चले गए, हरिदास भी चले गए उन सब। हरिदास तो डर रहे थे, नहीं जाना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु डरते नहीं थे, थोड़ा सा अवधूत जैसा कुछ आचरण करते थे, अवघड़ जैसा, वो साधु थे भी। उनसे लेके कहे कि आप लोग, मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण के नाम का उच्चारण किए, भगवान का नाम लीजिए उनके शरण में। इतना सुनते ही वो लोग दौड़ पड़े मारने के लिए, नित्यानंद को मारने के लिए दौड़, दोनों भागे, हरिदास जी भागे और भागे। वो लोग बहुत देर तक पीछा करते, लेकिन वो नशे में थे तो उनको भी गिर जाते थे, शराब पिए हुए थे तो पीछा भी नहीं कर पड़ते, कहीं गिर गए तो नित्यानंद प्रभु आए तो चले आए। बताए हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की आज ऐसे ऐसे हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि आप लोगों को यह नहीं देखना है, पापी है चाहे पुण्यात्मा, सबका उद्धार करना, सबको बताना चाहिए। तो फिर दूसरे बार गए वहां, तो गए तो नित्यानंद भी देखे और हरिदास भी थे कि एकदम शराब पीकर वो विशुद्ध थे, और हरिदास ठाकुर तो मना कर रहे थे, नहीं जाना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु की नहीं चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है कि चाहे पापी है चाहे पुण्यात्मा सबको देना है। वहां गए हम नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं कि अब भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेना चाहिए, मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ऐसे नहीं खोना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहिए। तब तक जगाई मधाई को यह सहन नहीं हुआ, शराब पिया था उस समय, प्राय मिट्टी के पात्र में ही वो रखते थे शराब, था ही वहां पर। क्या उसको कहते हैं, लोबनी हम लोग के तरह कहते हैं, मटका तो हम, मटका तो कॉमन बात है। पानी रखा जाता है ना सुराही में, वो एक खास उसी के आए लवनी। अब वो उसको असह्य हो गया। तो जो जगन्नाथ था वो नहीं, जो माधव था मथा, उसने लिया और जोर से जितने अपनी पूरी ताकत को समन किया, उगड़ किया, जोर से नित्यानंद के सिर पर, भगवान के सिर पर मार दिया। ऐसे तो भगवान भगवान है, सच्चिदानंद सिर पर लीला में देखा गया, नित्यानंद प्रभु का सिर फूट गया और पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया, पूरा एग्जिस्टेंस खून बहने लगा। जब मरने लगा तो वो तो और मारने जा रहा था मधाई, लेकिन दैव योग से ऐसी ऐसी भावना रूपी जगाई ने किया, जाकर नित्यानंद प्रभु को पकड़े, उसको पकड़ को उधर फेंक दिया, उसको कहते कि कैसे ब्राह्मण का लड़का है, साधु है, कहाँ का अवधूत है, उस कहाँ का है, उसको अतिथि हम लोग का, उसको मारो मत। तो उसने बचा लिया, जगाई बचाया था, मधाई तो मार रहा था, तो मधाई को भी वो उसे पकड़ा, उसको उधर फेंक दिया, नित्यानंद प्रभु की सेवा करेंगे। लेकिन उधर रक्त रंजित था, उसको दया आ गई। किसको दया आई थी, जगाई को, मधाई ने मारा, जगाई नहीं मारा। गाली गलौज में तो दौड़ा तो वह भी था, लेकिन वास्तव नहीं थे, लेकिन देखा कि जब सिर फूट गया तो उसको दया आ गई कि अरे साधु है महात्मा, नित्यानंद प्रभु को मैंने कैसे किया, उसको ढकेल दिया, उधर कर दिया, तो नशे में था, उधर गिर ही पड़ा। यह दृश्य है, तब तक कुछ लोग देख रहे, दूसरे दौड़कर चैतन्य महाप्रभु के पास गए, चैतन्य महाप्रभु जी सुने कि नित्यानंद प्रभु को किसी ने मार दिया है, एकदम चैतन्य महाप्रभु वायु वेग से सभी परिक्रमों से स्पॉट पाए और आते ही सुदर्शन चक्र को आह्वान किया, इन्वोक किया सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र चैतन्य महाप्रभु के हाथ में आ भी गया। अब नेक्स्ट था कि बस जैसे शिशुपाल को काटा था उसको काटना ही था दोनों को। तब तक नित्यानंद प्रभु एकदम सीधे चैतन्य महाप्रभु का पैर पकड़ लेके कि ये आप क्या कर रहे हैं, इस बार आपका अधिकार नहीं है, आपका कोई लीगल कोई अधिकार नहीं क्या कि विपन धारण करते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सुनने वाले नहीं थे कि नहीं, नित्यानंद खून देख कर उनका एकदम चैतन्य महाप्रभु का खून खोलने लगा, कैसे हमारे परिसर का हमारे भाई का इतना कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, दंडित करे कर रहे थे, दोनों को चैतन्य महाप्रभु मार रहे। तब तक नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु जगाई के तरफ लप के, तब तक नित्यानंद प्रभु कि नहीं इसने हमको बचाया है, इसने हम यह तो नहीं मारा हमको बचा। यह जब चैतन्य महाप्रभु सुने कि जगाई ने नित्यानंद प्रभु की सेवा की है, सहायता की है, मारा नहीं है बल्कि बचाया है, रक्षा किया, इमीडिएट चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल गया और चैतन्य महाप्रभु यह सुनकर कि इसने हमारे भक्त नित्यानंद प्रभु की सेवा की है, चैतन्य महापुरुष को अपने आंगन में ले लिए। ऐसे यद्यपि कि भगवान का श्री विग्रह एकदम पूर्ण है सच्चिदानंद में, लेकिन लीला में जीव ही तब तक वह तो देख ही रहा था सुदर्शन, वह भी समझ लिया था, मधाई भी थोड़ा दूरी पर गिरा हुआ था कि अब तो हमारा तो उसको तो बच गया, हम तो मारे ही जाएंगे। तो वो अब तो ऐसे करते रहता था, इसके बाद देखा कि प्रेम इसका कितना प्रसन्न जी हो गया, तो तुरंत उसने भी दौड़ कर आया चैतन्य महाप्रभु का पैर पकड़ लिया, पकड़ पकड़ तो चैतन्य महापुरुष जगाई जगाई को तो पहले से मधाई को अपने हृदय में लगाए, और जो भक्ति की प्रेम की अंतिम जो प्रकाष्ठा हो कृष्ण प्रेम दोनों को प्राप्त हुए, उनके शरीर में रोमांच कृष्ण प्रेम के अष्ट सात्विक विकार जो ट्रांसपरेशन शरीर में होला जगाई मधाई के होने लगे, भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे, उस समय एक विचित्र घटना घटी कि चैतन्य महाप्रभु का एकदम सोने जैसा तप्त शरीर बढ़िया था, सबके सामने देखा गया कि चैतन्य महाप्रभु एकदम नीला पड़ गए, काला शरीर हो गया, वो जो पाप को चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया उनके, अब ऐसे कोई भी इतना उनका पाप था दुराचार था कि उसे चैतन्य महाप्रभु लगे तो स्वयं भगवान का श्री विग्रह एकदम नीला पड़ गया पूरा। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पापों को ले, यद्यपि कि यह लीला है भगवान की, ऐसा नहीं है कि भगवान पर कोई पाप असर कर सकता है, लेकिन लीला में भगवान ने यह दिखाया कि उनका शरीर नीला पड़ गया एकदम से। भक्त लोग रोने लगे कि उनके पाप के कारण का पाप चैतन्य महाप्रभु के पास है तो नीला पड़ गया काला पड़ गया, अब इसका क्या उपाय हो। तो सभी भक्त लोग मिल करके अब इसको भाई पाप के प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए, तो गंगा में स्नान करने से समझा जाता है कि पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सभी भक्त चैतन्य महाप्रभु वहां से डायरेक्ट गए स्नान चैतन्य महाप्रभु किए, और स्नान करते ही जो अभी तक स्नान से पूर्व काला शरीर नीला पड़ गया था एकदम ठीक हो गया। और वह आप लोग कभी परिक्रमा करने जाएंगे चाहे जाते हैं तो जाइएगा, जगाई जगाई मधाई भी वो साथी थे अब तो वहीं पर लीला हुई थी, जगाई मधाई घाट है परिक्रमा करने जाएंगे तो अभी वो जिस स्पॉट पर सभी परिकरों को लेकर जगाई मधाई को लेकर भगवान चैतन्य महापुरुष स्नान किए थे, तो और भक्त लोग तो अपने अपने घर चले गए लेकिन जगाई मधाई वहीं रह गए बस उसी घाट का। तो यद्यपि की चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर स्नान किया था प्रथम बार, लेकिन अब घाट का नाम अभी जगाई मधाई घाट ही है। परवर्ती काल में उनका हृदय शुद्ध हो गया, भगवान के अंतिम परिकर हो गए, और उसी घाट पर बैठकर अब रोज रोज शाम को घर जाते थे लेकिन दिन भर वहीं पर भजन करते थे, गंगा जी में स्नान करते थे। चैतन्य महाप्रभु की यह लीला एक हुई थी जगाई मधाई के उद्धार की। चेतन चेतामृत तो संक्षिप्त में और ग्रंथों में बढ़िया से इसका वर्णन किया गया है। एक हम हालांकि थोड़ा विचित्र तरह की लीला है, इनकंसीवेबल चैत प्रभुपाद जी कहते हैं अचिंत्य, वो भगवान है लेकिन भगवान नहीं भी आते हैं तो कोई मनुष्य जैसा वो लीला करते हैं आचरण करते हैं। तो एक हम चैतन्य नित्यानंद प्रभु की एक दंड भंग लीला सुने होंगे, दंड चैतन्य महाप्रभु त्रिभंग को तोड़ कर फेंक दिए थे नदी का क्या नाम स्वर्ण रेखा न, नदी में एक दिन दंड जब चैतन्य महापुरुष संन्यास ले लिए थे तो चैतन्य महाप्रभु एक दंड लिए थे, त्रिदंड इसे कहा जाता है, और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे थे तो नदी के पास गए, स्वर्ण रेखा न कौन नदी का क्या नाम है, है? जगन्नाथपुरी से तो खूब सब भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ चार भक्त गए थे, वो लोग सब कीर्तन कर रहे हैं, उस चैतन्य महाप्रभु भी दंड दे दिए नित्यानंद के हाथ में पकड़े, वो स्नान करने लगे। चैतन्य महाप्रभु खूब बढ़िया से स्नान कर रहे थे, तैर रहे थे और भक्त लोग भी तैर रहे थे, हरि नाम का कीर्तन कर रहे थे, नित्यानंद के हाथ में दंड था तो नित्यानंद प्रभु को अच्छा नहीं लगा कि तो स्वयं भगवान है तो मनुष्य को संन्यास लेना और दंड ये सब क्या फालतू, और भी चैतन्य महाप्रभु दंड को संभाल भी नहीं पाते थे, दोनों हाथ से कीर्तन ही करते रहते थे ऐसे तो दंड यहां गिरता था रास्ते में, और दूसरा चैतन्य महाप्रभु ने उसको नित्यानंद प्रभु को टुकड़ा तीन टुकड़ा फेंक नहीं जब चैतन्य महाप्रभु स्नान स्नान करने के बाद कुछ देर तक तो नहीं, लेकिन एक समय पर याद आया कि दंड उनको दिया था दंड, तो पहले तो दूसरे एक थे उनके साथ गए थे कुंद कैसा कुछ दूसरे भक्त गए थे, वो पूछे देखे थे कि दंड है ही नहीं, पहले देखे थे नित्यानंद प्रभु के हाथ में दंड चैतन्य महाप्रभु दिए थे, वो उनके पास है ही नहीं, पूछे कि क्या हुआ दंड का। अब हमें नाम नहीं याद पता कौन भक्त मुकुंद अथवा कोई उसका नाम मुकुंद दत्त अथवा कोई, तो उसने कहा कि दिखाया कि देखो नदी फेंक देता नदी दिखाई रहता उधर तो दंड टूट गया चैतन्य महाप्रभु तीन खंड हो गया, तो किसने तोड़ा है, तो नित्यानंद पर के जिसका था उसने तोड़ दिया, तो उसको लगा कि अरे चैतन्य महापुरुष तोड़े, तो कहे वो कहाँ तोड़े था आपके हाथ में था, वो तो स्नान कर रहे थे होते होते हो गया कि इसने ही तोड़ इन्होंने तोड़ा है, तो नित्यानंद चैतन्य महापुरुष कुछ देर तक ख्याल नहीं था, ले स्नान स्नान कर जब चले तो उनको याद पूछे कि दंड हमारा तो दंड तो था नहीं तो फेंक ही दिए, जो चैतन्य महापुरुष बहुत उन पर नाराज हुए, बाह्य लीला में चैतन्य महापुरुष नाराजगी व्यक्त किया और यह नाराजगी बढ़ती रही चैतन्य महापुरुष का, कभी फिर से वो हुआ नहीं, पहले भी प्रयास किया गया था तो चैतन्य महापुरुष ने उनको आज्ञा दिया इसके दंड भंग के तुम गृहस्थ बनना होगा, तुमको जाओ गृहस्थ या अवधूत सन्यासी मैंने त्रमण कर दे, देखते साधु बन ही गए थे विरक्त बन गए, उम्र भी लगभग अब 40 के आसपास छूने वाला था, चैतन्य महाप्रभु कि ना हमारे साथ नहीं रह सकता, पर तो गए तो उनकी विवाह की भी लीला, अब नित्यानंद प्रभु का विवाह भी हुआ था आप लोग जानते ही होंगे संक्षेप में, एक वहां पर बहुत बड़े कालना अभी जगह है आप लोग गए हैं ना, कौन अंबिका का मायापुर से लगभग 30-40 किलोमीटर दक्षिण में गंगा जी के तट पर है गांव, वहां एक आप लोग गौरी दास जी का नाम सुने हृदय चैतन्य इत्यादि बहुत बड़े मात, उनके एक बड़े भाई थे सूर्य दास नाम था सूरज, उनकी दो कन्याएं हुई थी, अब नित्यानंद मन चूंकि अपराध किए थे चैतन्य महाप्रभु बाह्य दृष्टिकोण लीला के दृष्टिकोण से, इसीलिए नित्यानंद प्रभु के हृदय में भी उस अपराध के कारण वैष्णव अपराध के कारण उनमें पाप की वासना संस्कृतिफिकेशन उत्पन्न होने लगा, संसार के प्रति आकर्षण, हम किसी का अपराध करते हैं वैष्णव का तो हमारे हृदय में संसार के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है, भक्ति के प्रति डिटैचमेंट होने लगता है, और यहाँ तो नित्यानंद प्रभु के चूंकि उन्होंने अपराध किया दंड तोड़ा था सन्यासी का, तो इसलिए उनके हृदय में वासना सुन संसार भोग की इच्छा, और आज्ञा को था ही चैतन्य महापुर गए तुमको विवाह करना है, तो एक ब्राह्मण जानते थे वो गए सूर्यदास जी के पास, उनकी दो कन्याएं थी, एक का नाम था वसुधा और दूसरा का नाम था जानवा, उनकी दो कन्याएं थी, वसुधा बड़ी थी जानवा छोटी थी, दो कन्या, वो ब्राह्मण प्रस्ताव लेकर आए कि अपने दोनों ने अपनी एक लड़की का विवाह नित्यानंद, वो तो सूर्यदास तो क्या कर पतित सन्यासी जो अवधूत है उसके साथ तो समझ में नहीं आ रहा था, इनकंसिडर अपनी कन्या को सो कैसे दान, लेकिन अभी नित्यानंद के महात्म्य को भी जानते थे कि वो बहुत बड़े व्यक्ति चैतन्य महापुरुष एसोसिएट हैं तो ना ही भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वह ज्ञान पचा नहीं कि अपनी लड़की का विवाह और भी दृष्टिकोण होता है, मन उम्र है वो है साधु है फकीर है महात्मा है सन्यासी है, तो उन्होंने उचित उत्तर नहीं दिया उस ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक, थोड़ा सा लगा कि वो नहीं चाहते, लेकिन वो चला गया ब्राह्मण चला गया, तो सूर्यदास के मन में आने लगा जानते चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद पर भगवान है अचिंत लीला हो सकती है, उनके लिए हम लोग मनुष्य के जो मोरालिटी नहीं लागू किया जा सकता। अंत में वो राजी हो गए। तो विवाह होना था, वसुधा का विवाह है नित्यानंद प्रभु से हुआ, तय हुआ और सारी प्रक्रिया की गई। विवाह हो रहा था तो अभी उस दिन कुछ दिन तक ससुराल में नित्यानंद वहां थे और जानवा थी जो छोटी बहन थी वसुधा की, वो वसुधा की छोटी बहन जानवा थी। तो वो नित्यानंद प्रभु और लोग भी बैठे थे और वसुधा भी बैठी थी बाजू में, चैतन्य महाप्रभु को परिवेषण कर रही थी, कुछ बहुत बढ़िया पकवान बना था दे रही थी। तो बेचारी बड़ा प्रसन्नता से, मतलब कि अपने बहन के पति है, बहन है, उसकी सेवा कर रही थी। एक दो बार ऐसा हुआ कि जो सिर को तो ढक कर रखती थी लेकिन उसका ऊपर का जो वस्त्र होता है आंचल, आंचल ही कहते हैं ना, कभी कभी गिर जाता था। कभी कभी उन्हें प्रश्न में दोनों हाथ से किसी पात्र पर करते थे, कभी गिर जाता था। तो इतना अद्भुत सुंदर उसका, इतना सुंदर रूप था बेचारे। वो तो बैक फोर्थ परेशान के परोसी रहती, तब तक नित्यानंद को उसका हाथ पकड़ा करके बाजू में बैठा दी। अब सबके सामने बड़े भारी इंब्रासमेंट लड़की के लिए, पिता के लिए, लेकिन वो क्या कर सकता है, जमाई घर में इतना उपद्रव कर नित्यानंद। और नित्यानंद पूरा स्पष्ट करने, आपने कन्यादान किया, विवाह किया मेरे साथ वसुधा का, इसको मैं रखूंगा दहेज के रूप में। विवाह होता दहेज देना होता, डावरी देना था। अब डावरी तो कुछ सब्सटेंशियल डावरी तो दिया नहीं, दिए थे बेचारे, लेकिन मैंने इतना ग्लोरियस सब्सटेंशियल पर्याप्त होना चाहिए यह रहेगी। तो उनकी अब दो पत्नियां, दोनों से विवाह चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने किया था। जानवा बड़ी बहन थी, सॉरी छोटी बहन थी, बड़ी बहन थी वसुधा। कालक्रम से नित्यानंद प्रभु को संतान, वसुधा से दो संतान हुए, एक पुत्र था उसका वीरचंद्र और उनकी पुत्री हुई थी गंगा देवी, बहुत प्रसिद्ध एक अन्यतम आचार्य बनी हम लोग के गौड़ीय संप्रदाय में। लेकिन जन्म के थोड़े ही देर के बाद वसुधा का निधन हो गया, दुर्भाव हो गया। इन दोनों बच्चों का, छोटे छोटे ही थे दोनों का, पालन पोषण जानवा देवी ने किया और जानवा देवी ने ही दोनों को दीक्षा भी दिया। दोनों का दीक्षा वीरचंद्र और गंगा देवी का दीक्षा भी उन्होंने, जानवा देवी ने दिया था। दोनों अभिन्न है, जैसे बलराम जी की दो पत्नियां हैं रेवती और बारुणी, और वृक्षों से, किसी किसी वृक्षों से एक विशेष प्रकार का जूस निकलता है तो मधु निकाल, उसको बारुणी कहते हैं। तो वही बारुणी ही वृक्षों ने, जो वृक्ष के पुत्री समझाए, उन्हें बलराम जी को अर्पित किया। तो वो है बलराम जी की दो पत्नियां हैं और ये दोनों जानवा और वसुधा, ये दोनों रेवती और बारुणी हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी हैं। इसके बाद हमने इसे सुब्रुष में बता दिया था 1540 में, लगभग 66 वर्ष में हुआ अपनी लीला प्रकट करने के बाद नित्यानंद प्रभु एक दिन आए थे एक चक्रा, और वहां पर श्री विग्रह अद्यावधि विग्रह है, बंकिम राय नाम है, उसी श्री विग्रह में नित्यानंद प्रभु प्रविष्ट हो गए। इस तरह उनका त्रिभाव हुआ था। और ठीक है, हम इतना ही कहते हैं, फिर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो कुछ ऐसी चीजें होगा कि कहने में थोड़ा सा प्रस्तुत नहीं हुआ होगा तो पूछिए, तो मैं उत्तर देने में मेरी प्रसन्नता हुई हमको। नीताय छे अने करुणा है ये कवे शून्य हवे कैसे पद
है
तो वो तो नरोत्तम दास प्रार्थना ही करते हैं ना। ऐसे प्रभुपाद जी बहुत बार कई एक बार यह बात कहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना यदि किसी व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं है तो वह चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। यद्यपि को अभिन्न है लेकिन फिर लीला में पहले नित्यानंद प्रभु अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं और उन्हीं का दायित्व तो होता, अधिकार होता, वही चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जीव को समर्पित कर। इसीलिए हर प्रयास करके यदि ऐसा भेद नहीं माने दोनों एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र का, फिर भी लीला के दृष्टिकोण से लीला में चैतन्य महाप्रभु की अपेक्षा नित्यानंद प्रभु को समझाता है उनको ज्यादा कृपालु है, उनका ज्यादा कृपालु स्वरूप। जगाई मधाई को तो चैतन्य महाप्रभु मार ही देना चाहते थे, एकदम तैयारी थे, लेकिन उनको बचाने वाले, उनको चैतन्य महाप्रभु को चरणों में डाल देने वाले नित्यानंद प्रभु, तो उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। संसार वासना मोर कवे तुक्ष हवे, कवे निताई से करुणा, जब निताई चैतन्य नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो हमारे हृदय में जो संसार भोगने की वासना है, इच्छा है, वह समाप्त हो गया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, सबको प्रार्थना करना चाहिए। तो नरोत्तम दास कवि करुणा है, करुणा, करुणा समझते है ना, दया, मर्सी, यही प्रार्थना है कि हमको दया, तो दया कर देंगे तो सब कुछ हो जाए। तो प्रार्थना करना ही है तो दया, अब तो मांगने में तो कोई भूल हो सकता है कि यह कर दियो, पता नहीं हुआ हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। करुणा होगा तो करुणा होगा तो हमारे लिए क्या ठीक है क्या खराब है वो सब वो देख ले। कवि करुणा है वे संसार वसना मोरे कब कवे तुक्ष हवे, दया की ही याचना सबसे बढ़िया मांगना है तो दया। और एक और चीज उत्कृष्ट समझा जाता है कि मांगना बहुत अच्छा होता है कि सेवा पर दया कीजिए, दया मांगना चाहिए और सेवा, सेवा अधिकार दिए कर, सेवा का अधिकार कि मैं आपकी सेवा में लग सकूं, सेवा करता रहूं, सेवा हमसे छूटे नहीं, मैं आपकी सेवा से वंचित न हूं। इसलिए प्रतिदिन तुलसी जी से ही कर क्या है सेवा अधिकार दिए कर, हमको सेवा का अधिकार, सेवा का अवसर कि हम भगवान की सेवा कर सकें और भगवान को। तो दया भगवान से, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से और सेवा, उस सेवा में लग जाना। जो किसी व्यक्ति में जो भक्ति करने की क्षमता है, देखिए हम अपने को स्वर स्वर्ण कीर्तन में लगाए रहें भगवान के भक्ति, इसके जो एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, ताकत होती है, वो नित्यानंद प्रभु से प्राप्त होती है। और वही नित्यानंद प्रभु उन्हीं का प्रकट विजीव रिप्रेजेंटेशन है गुरु। तो नित्यानंद प्रभु की जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है वो प्रेम, और नित्यानंद प्रभु की जो दया है मर्सी से कहा जाता है, और चैतन्य महा नित्यानंद प्रभु की शक्ति है एनर्जी, वह जब वो मूर्त रूप मैनिफेस्ट क्या कर पर्सनिफाई होता है, विजिबल होता है, तो वह गुरु का होता है। तो और तो गुरु के थ्रू अंत में नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु के थ्रू हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जा सकते हैं। यह बात इसी बात को बार बार प्रभुपाद जी अपने से अतिशय तो यह भी कहा जाता है कि जब तक किसी व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त होती है तब तक वह चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई इसके बाद नित्यानंद प्रभु की कृपा, यह ऐसा कभी नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु की कृपा है और नित्यानंद प्रभु की कृपा है, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा आगे आगे चलती है। ऐसा नहीं हो कि चैतन्य महाप्रभु की ओवरटेक नहीं लेती है, जीव वहां खड़ा है तो यहाँ है नित्यानंद प्रभु की कृपा है और यह चैतन्य महाप्रभु ऐसे ऐसे चलते हैं। तो किसी कारण से मान लीजिए इसकी गति बंद हो जाए तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा ओवरटेक नहीं लेती है कि तब मैं चला जाऊंगा ना। यदि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद कृपा रुक गए तो इधर ही रुक जाए आगे नहीं जाते। तो इसलिए नित्य जो अंग्रेजी में इसे मर्सी कहा जाता है, कंपैशन कहा जाता है, संस्कृत में अनेक अनुग्रह भक्ति अनुग्रह है ना, कृपा ही है, अनुग्रह है, कृपा है, दया है, करुणा है, ये सब एक कहीं मैं सबका मर्सी से कहा जाता है, दया दया है, करुणा है, कृपा है, अनुग्रह है, चाहे करुणा है, कहीं उसी के लिए अंग्रेजी में कंपैशन है, मर्सी है। देखिए वो है, एक बार एक सन्यासी प्रवचन दे रहे थे एक जगह, ऐसे प्रवचन चल रहा तो एक बूढ़ी माँ वृद्ध शरीर था, क्वेश्चन आंसर के समय हाथ उठाया ऊपर आकाश के तरफ, उन्होंने पूछा कि तो उसने पूछे क्या, तो उसने कहा कि आप बताइए दया और करुणा में क्या अंतर है। दया क्योंकि वहां पर लिखा गया है करुणया व तीर्ण कलो, कैसे शुरू होता है श्लोक चैतन्य महाप्रभु की वंदना, अनर्पित चरिम चिरात करुणया व तीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति से। कहा गया कि चैतन्य करुण अनर्पित चरिम चिरात करुणया तीर्ण, करुणा करके चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए, कृपा नहीं कहा तो वो तो नहीं जवाब दे सके, लेकिन बूढ़ी माता जी वो एक्सप्लेन की थी। वो कहती कि करुणा दया, यदि आपके पास कोई दीन है, भिखारी है, गरीब है, बेचारा आपके पास आता है, उसकी दीन दशा को देखकर आपके हृदय में एक भावना होती है और उसको कुछ देते हैं तो उसको दया कहते हैं, कृपा कहते हैं। जब वो आपके पास आया दीन होकर गरीब होकर बेचारा आपसे कहा तो आपने दे दिया तो उसको दया अथवा कृपा कहो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो मांगने की अपेक्षा नहीं करते, उसको देखे अथवा देखे भी नहीं सुनने की वह व्यक्ति दुखी है, वो तो आप हमको जानता भी नहीं, लेकिन फिर भी उस पर जो जाकर उसके हेल्प करते हैं उसको करुणा कहते हैं। अन्य अवतारों में आप लोग सुने होंगे, भगवान राम का अवतार होगा हुआ होना था, चाहे कृष्ण का अवतार, तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर श्वेत द्वीप में गए थे, प्रार्थना किए थे। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, विखंसा अर्थित नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक। विखंसार्थितो, विखंसा ब्रह्मा जी ने देवताओं ने प्रार्थना किया था तो चैतन्य कृष्ण का अवतार हुआ, जाकर रोए धुपाए थे तो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के लिए कोई नहीं, कोई देवता लोग नहीं गए ऐसे, वो अद्वैताचार्य अपने यहां करते थे, पूजा पाठ किए थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोला कि देवता लोग क्षीर सागर के तट पर गए थे, कोई नहीं गया था ना, आप लोगों में से कोई नहीं गया था ना, देवता नहीं हम ही जाकर पाए थे। तो करुणा मतलब कि जीवों की दुर्गति है, पृथ्वी दुख में है, इसको देवता लोग बताए थे तब कृष्ण आए थे दया करके कृपा करके, लेकिन चैतन्य महापुरुष कोई कहने नहीं गया था, कोई देवता कहीं नहीं कहते। तो यह अंतर माने दया की अपेक्षा करुणा थोड़ा श्रेष्ठ है, दया में कृपा में तो आप अपेक्षा करते हैं कि अगला व्यक्ति आपसे कुछ मांगे कहे प्रार्थना करे तो आप दे देते हैं, लेकिन करुणा बोलने नहीं कि मांगेगा तब अथवा हमारे पास आएगा तब दूंगा ऐसा ना, उसके पास पहुंचाना है, सुन लिए हैं कि वहां पर एक व्यक्ति दुखी है, जमुना के उस पार जो माट गांव है वहां पर कोई चाहे कोई गांव वहां पर कोई दुखी है तो अपने से चले, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे किए थे, इसलिए करुणयाव अनर्पित चरिम चिरात करुणयाव तीर्ण कलो, करुणा करके दया करके नहीं, दया तो तब जब आपके कोई गया ही नहीं था तो दया का पर करुणयाव, तो थोड़ा सा करुणा को तो इसको आस्वादन के लिए रख लिया, ऐसा मत समझिए कि इतना भारी भेद करना चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार विशेष हो करुणामय अवतार करुणया अवतीर्ण कलो। एक जगह एक हिंदी के कवि ने दया पर बातें की है, वो कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, उसका अर्थ है कि साधु का हृदय, कवि प्रसिद्धि है सब लोग जानते हैं, साधु का हृदय सॉफ्ट होता है, कितना सॉफ्ट, नवनीत के साथ, नवनीत मतलब माखन के समान सॉफ्ट होता है। लेकिन उसने कहा है, कहा कवि, कवियों ने कहा लेकिन उनको कहने नहीं आया, एक गलत स्टेटमेंट हुआ है, संत का हृदय दया से भरा रहता है, संत हृदय संत लोग कहते हैं वर्णन, कवि लोग कहें कि साधु का हृदय नवनीत के माखन के समान कोमल होता है, उन्होंने कहा है लेकिन उनको कहने नहीं आया, संत हृदय नवनीत समाना कहा कबिन, बहुत से कवियों ने वर्ण के बड़े कहा कहीं ना कहने नहीं आए, भाई क्या त्रुटि हो गई, ये तुलना में होता ही है साधु का है। तो वो बता निज परिताप द्रवई नवनीता, नवनीत है माखन है, बाहर मई जून के महीने में 47 डिग्री टेम्परेचर है, यदि नवनीत को रख दीजिए फ्रिज में तो उसको कुछ नहीं पिघलता नहीं, जब उस पर ताप लगता है तो पिघलना चालू कर, निज पर ताप जब माखन पर आंच लगता है तो पिघलने लगता है, लेकिन साधु का हृदय ऐसा नहीं होता है, उनको कितना भी कंफर्टेबल लगे पर दुख द्रव ही संत सुपिनीता, दूसरों का दुख सुन लेते हैं उसका हृदय एकदम पिघल जाता है। तो माखन की तुलना माखन के हृदय से, माखन से और साधु के हृदय से तुलना करना यह अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं। क्योंकि जब आप देखें माखन फ्रिज में रहे, बाहर कितना हो टेम्परेचर, कुछ लेना देना नहीं। लेकिन साधु को कितना भी कंफर्टेबल रखिए, कहीं वो सुनता है कि वह व्यक्ति दुखी है तो उसका हृदय एकदम विदीर्ण हो, फटना द्रवित हो जाता तो है। ऐसे कौन अच्छा अपने याद दिलाया, हालांकि हम उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, दे भी नहीं सकते हैं, लेकिन वह इंसिडेंट देने से कुछ अंतर करुणा और दया में है। तो आगे पीछे की बात नहीं है, वो अभी जो है ना करुणा चाहे दया है चैतन्य महाप्रभु का, वो पीछे पीछे ही रहती है हमेशा, वो पिछलगु है, आगे कभी नहीं जाए चैतन्य महाप्रभु की कृपा। अवधूत कहते हैं ना, जिसे हम लोग अवघड़ कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कुंडल एक कान में धारण करते हैं। ठीक है, कभी बाद में चर्चा कर लें। ठीक है, तो अभिषेक बिंब भी जाना है ना आज, क्या आप आपको कैसे अनुभव करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु की चाहे नित्य नित्यानंद हम पर कृपा हो रही है। तो जैसे वो होने लगा, जैसे आप खाते हैं तो बाजू वाले से भक्त नहीं ना पूछते हैं कि हमारा पेट भर रहा है कि नहीं। परोसने वाले से पूछे उसे कि भाई बताओ हमारा पेट भर रहा है कैसे, नजदीक में बैठा है पूछे। वो अनुभव होने लगता है, हमको पता लगने लगता है हम लोगों को पेट भरा है कि नहीं, दूसरे किसी को नहीं पता। यहाँ तक पंचगौड़ पुरु को ही पता नहीं लगता है क्या चाहे गौर भगवान कोई पता नहीं लगता है, लेकिन हम लोगों को पता लग जाता है कि बस थाली लेकर उठ जाते हैं। ऐसे वैदिक ग्रंथों में यह बात कही गई एकदम टॉप कटघरी का, कैसे पता लगना चाहिए, अनेक साधन है, लेकिन एकदम हाईएस्ट किसी में होने लगे यह भाव तो समझना चाहिए कि कृष्ण पर हमारे के, वह यह है कि एक भाव है कि हमको कृष्ण का प्रेजेंस का फील होने लगे, जहां जाते हैं तो लगता है कि कृष्ण हमारे तो यह भी। लेकिन जो टॉप कटघरी की जब कृपा किसी तो उससे फील होने लगता है कि भगवान हमको छोड़कर चले गए, हम पर कृपा नहीं करके हमको एकदम छोड़ छाड़ कर चले गए, जिसे विरह कहा जाता है, विप्रलम्ब कहा जाता है। यह किसी के हृदय में होने लगे कि हम भक्ति से कोसों दूर हैं, हमसे भजन नहीं हो रहा है, भगवान पर हम पर कृपा एकदम नहीं, हमको छोड़ कर चले गए। तब दूसरों आप तो वह तो दूसरा अनुमान कर सकता है कि हाँ इस पर कृपा हो रही है, भगवान की विरह जिसे कहते हैं, कि यह भान होने लगे कि भगवान हमको छोड़कर चले गए। जब भगवान यहां से चले गए वृंदावन से मथुरा, तो ब्रजवासियों को गोपियों को यह भावना हो रही थी, पर छोड़कर चले ही गए थे, तो वह कृपा का अथवा भक्ति का सर्वोच्च स्थिति है। यह होने लगे कि भगवान हमको छोड़कर चले गए, हम पर कृपा नहीं कर रहे, यह भाव आने लगे तो जान लेना चाहिए कि हाँ जो, हालांकि वो तो अपने को तो पता भी नहीं लगा, अपने को तो यही लगा कृपा ही नहीं हो। ठीक है, तो हम श्री नित्यानंद प्रभु जी की जय। नित्यानंद त्रयोदशी की जय। श्रील प्रभुपाद की।